नमस्कार भारत, आज है 19 सितंबर दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर कोरियाई संकट, रोहिंग्या समस्या और यूएन में सुधार के एजेंडे के साथ संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में आज बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रोहिंग्या संकट के बीच म्यांमार की नेता आंग सान सूची के संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में नहीं पहुंचने के क्या है मायने?
सूची को ये लगता है अगर वो संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में भाग लेने जाएंगे आम सभा में, तो उनको घेरने की कोशिश वो सारे राष्ट्र करेंगे जो जनतांत्रिक उदार हैं, मानवीय मूल्यों के संरक्षक हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पूरे हुए 6 महीने आज गिनाएंगे उपलब्धियां। होगी एक खास रिपोर्ट कश्मीर में सूफी संगीत की दशा और दिशा पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका पर अब एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी मौसम विभाग ने चेताया है कि हरिकेन मारिया और खतरनाक हो गया है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान का केंद्र आने वाले कुछ घंटों के अंदर डोमिनिका के पास से गुजरेगा। पिछले दिनों इरमा हरिकेन से जूझने वाले कई द्वीप एक बार फिर हरिकेन मारिया की चपेट में आ सकते हैं। डोमिनिका की राजधानी रोजो में मौजूद पत्रकार कार्लाइल जां बेस्टिस ने बताया कि हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है क्योंकि भारी तबाही मचने की आशंका है। समंदर अशांत हो गया है और भारी बारिश हो रही है। अंधेरा सा छा गया है। पानी की सप्लाई बंद हो गई है और शायद कुछ देर में बिजली भी चली जाए। लोगों ने जान माल को बचाने के लिए हर संभव इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ये थे पत्रकार कार्लाइल जां बैटिस्ट के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना की अपील की है। ट्रंप न्यूयॉर्क में लातिन अमेरिका के नेताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। निकोलस मादुरो की समाजवादी तानाशाही ने लोगों को गरीबी और कष्ट की तरफ धकेल दिया है। लोग भूख से मर रहे हैं और देश धराशायी हो रहा है। जिम्मेदार पड़ोसी और दोस्त होने के नाते हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वेनेजुएला के लोगों को आज़ादी दिलवाने और लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करें। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक इकबाल कास्कर को जबरन वसूली के मामले में नागपाड़ा के गार्डन हाउस से गिरफ्तार किया गया। आरोप के मुताबिक इकबाल कास्कर ने एक बिल्डर से कथित तौर पर फोन पर जबरन वसूली की कोशिश की थी। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि इकबाल कास्कर ने एक बिल्डर से 4 महीने पहले थाने में फोन पर पैसे वसूलने की कोशिश की थी। बिल्डर ने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। नंबर ट्रेस किया गया तो ये कास्कर का निकला। म्यांमार के नेता आंग सान सूची रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़की हिंसा पर पहली बार देश को संबोधित करने जा रही हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार से हिंसा रोकने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाने पर सहमति जताई है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के माध्यम से दबाव बनाया जा सकता है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने चेताया था कि वो प्रतिबंध लगने के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम तेज कर देगा। इस बीच स्पेन और वियतनाम ने उत्तर कोरिया के राजदूत को वापस भेजने का फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा सचिव जिम मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए ऐसे सैन्य विकल्प उपलब्ध हैं जिससे दक्षिण कोरिया को कोई खतरा नहीं होगा, मगर उन्होंने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया कि वे विकल्प क्या हैं। केन्या में पिछले चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देने वाली फ्रांस की कंपनी ने कहा है कि उसकी तकनीक को अक्टूबर में दोबारा होने जा रहे चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंपनी का कहना है कि उपकरणों को तय समय पर तैयार करना मुश्किल होगा। केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते चुनावों को रद्द करके नए चुनाव कराने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
आ- आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। न्यूयॉर्क में 12 सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 72वां अधिवेशन चल रहा है। आज अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप वहां बोलने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो उत्तर कोरिया, ईरान, इसराइल, फलस्तीनी संकट, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और रोहिंग्या समस्या पर अपना पक्ष रख सकते हैं। यूएन में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि नौकरशाही और खराब प्रबंधन की वजह से संयुक्त राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा और जरूरत है कि लोगों की समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक ब्यौरा सुनिए आदर्श राठौर से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पहली बार यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। ट्रंप की कोशिश होगी कि उत्तर कोरिया और ईरान पर दबाव बनाया जाए। जहां वो उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए और प्रतिबंध लगाने की अपील कर सकते हैं, वहीं ईरान के साथ 2015 में हुए समझौते को खत्म करने पर भी बात कर सकते हैं। ट्रंप पर सबकी निगाहें इसलिए भी रहेंगी क्योंकि अमरीका जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते से पीछे हटने की बात कर रहा है, मगर इस वक्त विश्व समुदाय के सामने रोहिंग्या मुसलमानों का संकट सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप इस संकट पर भी बात कर सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक भी होगी जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन करेंगे। जॉनसन ने कहा कि हत्याओं का ये सिलसिला रुकना चाहिए। रोहिंग्या आबादी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बर्बर है। मेरी आंग सांग सूची से कई बार बात हुई है। उन्हें सेना को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। मैंने उन्हें यही कहा है कि सभी चाहते हैं कि हत्याओं का ये सिलसिला बंद हो। जिस वक्त सूची पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रही हैं, म्यांमार के एक वरिष्ठ सैन्य जनरल ने उनका बचाव किया है। म्यांमार में जब सैन्य शासन था, स्वेमान देश के सबसे वरिष्ठ जनरल थे। स्वेमान लगभग हर रोज सूची से मिलकर उन्हें सलाह देते हैं। स्वेमान ने बीबीसी से कहा, मैं आंग सान सूची के बारे में एक चीज जानता हूँ कि वो इस देश और यहाँ के लोगों से प्यार करती हैं। वो लोकतंत्र और मानवाधिकार को तवज्जो देती हैं। वो जो भी करेंगी इन्हीं आदर्शों पर आधारित होगा। म्यांमार से पलायन कर रहे रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर वैश्विक समुदाय से मदद मांगेंगी। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई मुद्दों पर बात होनी है, मगर रोहिंग्या संकट और उत्तर कोरिया चर्चा के केंद्र में हैं। ऐसे में ट्रंप के भाषण में भी यही दो मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में ट्रंप के भाषण संबंधी जानकारी दे रहे थे आदर्श राठौर। और अब सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क हमारे सहयोगी सलीम रिजवी के पास। सलीम, संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में संयुक्त राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
जी अमरेश, ये देखा जा रहा है यहाँ पर बात जो हो रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब आज यूएन रिफॉर्म्स की जो मीटिंग में बोले तो पहली बार उनका एक भाषण था यूएन में, लेकिन असल जो है होगा जो अब से चंद घंटों बाद अधिवेशन जो वार्षिक होता है महासभा का, उसमें जो इनकी स्पीच होगी डिबेट के दौरान, तो वो लोग ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह का रुख अपनाएंगे। और ट्रंप को आप जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा के ये राष्ट्रपति बने हैं और वो जो है एक बहुपक्षीय फोरम कहा जाता है यूएन मल्टीलैटरल, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई क्या ये वहां पर वही रुख रखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट लेक्चर देंगे या इस तरह की बात करेंगे कि सबको मिल के विश्व समुदाय जो है उनको जो विभिन्न मुद्दे सामने हैं उनके ये हल करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये मेन चीज है। और दूसरा, ये जो इश्यूज हैं उनमें तो कहा जा रहा है कि वो उत्तर कोरिया पे ज्यादा उनका भाषण जो है केंद्रित रहेगा और उसके बाद ईरान और रोहिंग्या के बारे में भी शायद बात कर सकते हैं, जबकि अभी तक कोई रोहिंग्या के बारे में जाहिर है कि आला सतह पर कोई ऐसी बात यहाँ ट्रंप साहब ने तो नहीं कही। तो ये मेन चीजें ट्रंप साहब के बारे में है, लेकिन यूएन रिफॉर्म्स पे उन्होंने ये कहा है कि भाई अब ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर फोकस ना हो, मतलब अफसर उस पर ज्यादा फोकस ना हो बल्कि लोगों के बारे में सोच कर काम किया जाए। तो ये यूएन रिफॉर्म्स, उन्होंने कहा कि भाई खर्चा हम अमरीका जो है बहुत ज्यादा देता है दूसरे देशों के मुकाबले, तो इस पर भी उनको काफी जो है यूएन में उन्होंने आज स्पीच में अपनी जो यूएन रिफॉर्म्स पे तो काफी नाराजगी दिखाई, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा और अब इसमें कटौती भी करें और इसको जरा ऐसा बनाएं जिससे कि आगे जो है पूरी क्षमता से काम कर सके संयुक्त राष्ट्र।
सलीम, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में, बहुत संक्षेप में बताएं।
जी, ये ट्रायलैटरल द्विपक्षीय जो बैठक थी अमरीका, भारत और जापान की, तो विदेश मंत्री थे, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी जाहिर है कि उन्होंने खुल के अपना रुख रखा। और ये बेसिकली जो बात की गई वो समुद्री है, जो आवाजाही का मामला है वो साउथ चाइना सी के इलाके में तो चीन पर केंद्रित रही, जबकि नाम तो नहीं लिया गया चीन का उसमें, लेकिन बात वही की गई कि भाई जो उसकी आजादी है मैरिटाइम सिक्योरिटी की, मतलब वहां समुद्र में आवाजाही की आजादी पर के बारे में जोर दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि भाई जो कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव्स हैं चाइना जो ले रहा है वो वन बेल्ट वन रोड का जैसे कार्यक्रम है, तो वो संप्रभुता दूसरे देशों की उसका ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा गया है जो प्रसार का मामला है परमाणु हथियारों के, तो सुषमा स्वराज ने कहा कि इस पर ये देखना चाहिए कि प्रसार में कौन कौन शामिल है, इसके तार कहां से ताने बाने जुड़ते हैं। ये जाहिर है पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उसी तरफ था कि उनकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई ये प्रसार कौन कर रहा है, कौन कौन शामिल है, उनको जांच में लाके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मेन मुद्दे थे जो कि जाहिर है कि आप जानते हैं अगले हफ्ते जो है जिम मैटिस अमरीकी विदेश मंत्री अमरीकी रक्षा मंत्री जा रहे हैं दिल्ली में, तो वो भी बैठक करेंगे वहां पर भारतीय रक्षा मंत्री के साथ।
न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिंग्या संकट के बीच म्यांमार की नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूची संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में शामिल नहीं हो रही हैं, बल्कि आज ही वो अपने यहाँ देशवासियों को संबोधित करेंगी। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सेना की हिंसा के लिए म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। क्या वजह रही कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक के तौर पर विख्यात रहीं सूची ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी बात रखना जरूरी नहीं समझा या नहीं चुना, यही पूछा बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत से।
देखिए वजह तो बिल्कुल साफ है, आंग सान सू ची को ये लगता है अगर वो संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में भाग लेने जाएंगी आम सभा में तो उनको घेरने की कोशिश वो सारे राष्ट्र करेंगे जो जनतांत्रिक उदार हैं, मानवीय मूल्यों के संरक्षक हैं रोहिंग्याओं को लेकर। और क्योंकि वो नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार विजेता हैं तो उनके लिए निश्चय ही यह स्थिति असमंजसवादी। मगर जो दूसरी बात मुझे लगता है कि पहाड़ नहीं टूट पड़ता अगर वो वहां जाती तो हम इसको लेकर क्यों चिंतित होंगे, नहीं गई इसका कौन सा पहाड़ टूट गया। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी कोई सार्थकता संगति या महत्व सामरिक या किसी और तरह का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है? ये बात सर्वविदित है कि इस संस्था का जो बजट है उसका 98% बजट इसके अपने कर्मचारियों के करमुक्त तनख्वाहों पेंशनों भत्तों आदि पर खर्च होता है, और सिवाय इसके कि सुरक्षा परिषद में कुछ निरर्थक चर्चाएं होती हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, वहाँ किसी के जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है ये मुझे समझ में नहीं आता। 40-42 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने के बाद मैंने ये पाया है कि विजेताओं ने जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन 1945 में किया था युद्ध के बाद, उसकी संरचनात्मक कमजोरियां इतनी विकट हैं कि आज के संसार में उसकी कोई सार्थकता रही नहीं गई है।
मैं कूटनीतिक पहलू से ये समझना चाहता हूँ कि अगर अब भी सूची जो कार्रवाई उनसे अपेक्षित है वो नहीं लेती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास क्या कोई और विकल्प है?
सारे विकल्प निषेध आर्थिक निषेध आदि अपनाने के बाद यदि आप कुछ नहीं कर पाए उत्तरी कोरिया का तो क्या बिगाड़ लेंगे आप म्यांमार का? देखिए मुझे लगता है कि जो बहस आंग सान सू ची वाली है वो ये है कि आज वही आंग सान सू ची का महिमा मंडन किया था पश्चिम ने मानवाधिकारों की रक्षिका के रूप में, वो आज उन्हीं के विरुद्ध सर पड़ गया है भस्मासुर की तरह। ये समस्या रोहिंग्याओं वाली जो है ये मार्मिक और मानवीय तो है मगर ये इतनी सीधी और सरल नहीं है कि भारत में जिस तरह उसका ध्रुवीकरण हिंदुत्व और मुसलमानों के और धर्म निरपेक्षता की नीति के साथ जोड़कर किया जा रहा है कि ये कौन सा शरणार्थियों को शरण देने का तर्क है। शरणार्थी बड़ी संख्या में प्रवेश भी करेंगे, वो उन जगहों को भी चुनेंगे जहां वो बसना चाहती है। ये बात समझ में नहीं आती कि जम्मू कश्मीर राज्य जो इतनी दूर है उस सरहद से वहां इतना बड़ा जमकर रोहिंग्याओं का कैसे हो जाता है। रोहिंग्या मासूम हो सकते हैं, निर्दोष हो सकते हैं, मगर रोहिंग्याओं को राज्यविहीन व्यक्ति सूची ने नहीं बनाया है, इसका इतिहास 50-60 साल पुराना है।
ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार पुष्पेश पंत। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की रजिस्टर्ड संख्या 14,000 से ज्यादा है, लेकिन कुछ दूसरे आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या लगभग 40,000 के करीब है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। अब इन रोहिंग्या शरणार्थियों को केंद्र सरकार देश से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई में सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों पर चरमपंथी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ है इस हलफनामे में और आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने यही पूछा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से।
तो केंद्र सरकार ने जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज के मामले में हलफनामा दायर किया है उसमें ये लिखा है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिर्फ सरकार की पॉलिसी का इश्यू है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि किसी रेफ्यूजी को या किसी कम्युनिटी को जो हिंदुस्तान के बाहर से है उसको यहाँ रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए, ये पूरा सरकार के दायरे में आता है। उन्होंने ये बोला है कि इनके बारे में कुछ इनको इनपुट्स मिले हैं कि ये लोग रेडिकलाइज करने की इनको कोशिश करी जा रही है, कुछ आईसिस और ISI वगैरह इन लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग सिक्योरिटी का थ्रेट होंगे। और फिर उन्होंने बोला है कि इनको हटाया जो जाएगा हिंदुस्तान से, जब हटाया जाएगा तो जो सरकार ने जो इसके बारे में प्रोसीजर ले डाउन किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे हटाया जाता है उसके तहत ही हटाया जाएगा, ये हलफनामे में उन्होंने बोला।
इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है, अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ सकता है कोर्ट में?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और उसको ये इस पर बहस होगी कि भाई कोर्ट को इंटरफेयर करने का हक है कि नहीं है। इस पर तो मेरी राय में कानून बिल्कुल क्लियर है, हमारा संविधान ये कहता है कि हर गैर नागरिक को भी, कोई भी जने को ये अधिकार है जो मौलिक अधिकार है धारा 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी का, हर एक जने को है। तो अगर आप किसी जने को ऐसे देश में भेज देते हैं जहां पर उसकी जान खतरे में आ जाती है तो उसके धारा 21 के मौलिक अधिकार का हनन होगा, और इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस पर सरकार को नोटिस दिया हुआ है। और इसके लिए चाहे हिंदुस्तान ने रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी हरदम यही रही है जो रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कि जो रेफ्यूजीज हैं उनको हिंदुस्तान में पनाह दी जाएगी और UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की उसमें मदद ली जाएगी। लेकिन रोहिंग्या के मामले में भारत सरकार बिल्कुल उल्टा बोल रही है, क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं और ऐसा लगता है कि ये भाजपा जो एक हिंदुत्ववादी कम्युनल सरकार है अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है।
ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जिनका मानना है कि भारत का संविधान तो रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देता है लेकिन सरकार कथित रूप से अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए उन्हें देश से बाहर निकालना चाहती है।
खबर सच है अगर BBC पर है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 6 महीने पूरे करने के मौके पर सोमवार को एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें पिछले करीब 1.5 दशक में सत्ता में रही दूसरे दलों की सरकारों की जमकर आलोचना की गई है। सरकार अपनी 6 महीने की उपलब्धियों का ब्यौरा आज देगी। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और उस पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
योगी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर भी जश्न मनाया था और अब 6 महीने पूरे होने पर भी ऐसा कर रही है। सोमवार को जहां पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया वहीं आज अपनी उपलब्धियों की चर्चा करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने जो श्वेत पत्र जारी किया वो दरअसल पिछले 15 साल की सरकारों का लेखा जोखा था। योगी ने कहा कि ऐसा करना जरूरी था।
पिछले 12-15 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर कार्य करने वाली सरकारों के कारनामों की एक अनंत श्रृंखला है।
इन पे जो ऋण था 11-12 में था 35,952.78 करोड़, जो 15-16 में बढ़कर के 75,950.29 करोड़ हो गई। मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि प्रदेश के सभी PSUs बंद हो चुके हैं। ये प्रदेश के अंदर एक गैर जिम्मेदार, भ्रष्ट और जन विरोधी सरकारों के प्रमाण को पुष्ट करता है।
आदित्यनाथ योगी ने खासकर कानून व्यवस्था और आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछली सरकारों को श्वेत पत्र में आड़े हाथों लिया है। श्वेत पत्र में मथुरा के जवाहर बाग घटना के अलावा किसानों के चीनी मिलों में फंसे भुगतान का भी जिक्र है। ये भी कहा गया है कि पिछली सरकार में हर हफ्ते औसतन 2 दंगे हुए। श्वेत पत्र में पिछली सरकारों की बात को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार की जमकर खिंचाई की है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह कहते हैं,
उनका वो इशू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया भाई एक बड़ी लकीर खींच दो, एक बहुत बड़ा अमाउंट की चर्चा कर दूं, लोग इसी में फंस के रह जाएंगे। अरे इतना अमाउंट खराब हो गया प्रदेश का, सवाल ये आपकी सरकार है, आप बताइए आपने क्या परफॉर्म किया। हमने तो कभी 5 साल में नहीं रोना रोया कि पिछली सरकार ने क्या किया। बजट प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी श्वेत पत्र पहले से जारी किया था। बजट में जितना पिछली सरकार के बजट में पैसा था उससे
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस मामले में योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जबकि 6 महीने में सरकार की उपलब्धियों की बजाय पिछली सरकारों के कथित कारनामों का जिक्र करने को लेकर राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य तय किया था और वो उसे पाने में भी नाकाम रही थी। ऐसी स्थिति में 6 महीने बाद पिछली सरकारों की बात करना सरकार की हताशा दिखाता है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
सरकार जब आई तो उसे पता ही नहीं था, सरकार को ये इल्हाम ही नहीं कि सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या अनिवार्य है, क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अनुभव नहीं है और अनुभवी लोग उनकी कैबिनेट में भी उस तरह के नहीं है जैसे होने चाहिए। या तो सरकार ये मान ले कि वो उस समय नहीं ला पाई तो वो प्रायश्चित मोड में है।
बहरहाल योगी सरकार आज अपनी उपलब्धियों का भी पिटारा खोलेगी, लेकिन जानकारों के मुताबिक पिटारे में ऐसे काम कम ही होंगे जिन्हें लोग राज्य सरकार की उपलब्धियों के तौर पर खुद भी महसूस कर रहे होंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
वक्त दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालने का है। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर स्टूडियो में अखबारों के पन्ने पलट रहे हैं। आदर्श, क्या कहते हैं आज के अखबार?
अमरीश, दो खबरें आज दिल्ली के अखबारों में छाई हुई हैं, एक तो है रोहिंग्या मामला और दूसरी है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गवाही। दैनिक जागरण की खबर कहती है कि रोहिंग्या शरणार्थियों से सुरक्षा को खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे का जिक्र किया है जिसमें कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान अवैध शरणार्थी हैं और इनसे खतरा है क्योंकि इनमें से कुछ लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। यही खबर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स समेत लगभग सभी अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता से ली गई है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के रिश्ते इस्लामिक स्टेट और ISI से हैं, साथ ही ये भी कहा कि इन्हें वापस भेजना नीतिगत फैसला है और कोर्ट को इससे अलग रहना चाहिए। इस बीच अमर उजाला में खबर छपी है कि अलकायदा का एक संदिग्ध ब्रिटिश आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह भारत में रहकर म्यांमार की सेना से लड़ने की तैयारी कर रहा था। मूल रूप से यह बांग्लादेश का है और अलकायदा की तरफ से सीरिया की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है। भास्कर ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी के बचाव में अमित शाह की जो गवाही है उसको जगह दी है। इसमें अमित शाह के बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि दंगे के दिन असेंबली और अस्पताल में माया से वो मिले थे और फिर वे कहाँ गई इसका उन्हें पता नहीं है। द हिंदू ने तमिलनाडु में बागी चल रहे 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर कहती है कि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने AIADMK के बागी TTV दिनाकरन समर्थक विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। इस कदम से पलनीस्वामी सरकार का संकट दूर होता नजर आ रहा है। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है कि हरियाणा पुलिस ने सोमवार को 43 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर है।
आदर्श, अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में सूफी संगीत अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसे गाने बजाने वाले कम हुए हैं तो इसके कदरदानों की तादाद भी घटी है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो सूफी संगीत की समृद्ध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाना चाहती हैं बल्कि अपने संगीत के जरिए उसमें नए आयाम भी जोड़ना चाहती हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कश्मीरी क्लासिकल सूफी संगीत की धुनों को सीखने और समझने का रियाज 18 वर्ष की इरफाना गांव की कई लड़कियों के साथ मिलकर घर के एक कमरे में बीते 4 वर्षों से कर रही है।
इस रियाज का मकसद कश्मीर में सूफी संगीत को बचाने की और एक पहल है।
इरफाना अपने साथियों के बीच बैठकर 100 तारों वाला संतूर बजा रही है। इन सभी लड़कियों का रोजाना का मामूल है कि स्कूल से आने के बाद हर दिन करीब 2 घंटों का समय सूफी संगीत सीखने के साथ गुजरता है। इरफाना के पिता भी कश्मीर के सूफी संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। पिता को देख इरफाना ने भी सूफी तारों को छूने को छेड़ना शुरू किया। वो कहती हैं कि उन्हें बॉलीवुड संगीत या दूसरे पॉप संगीत की कभी चाह नहीं हुई।
ये अपना अपना शौक होता है, उनको वही सीखने का शौक है, हमें यही शौक हो गया। हमने सोचा कि हम ये फिर भी हमारे अपना रिवायती है कश्मीरी में, ये हमारा कल्चर है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी सीखूँ।
बीते 3 वर्षों से 17 वर्ष की साइमा हमीद क्लासिकल संगीत म्यूजिक को सीखने का रियाज कर रही हैं। उन्हें लगता है कि कश्मीर के सूफी संगीत के साथ जुड़ने से वो अपनी उस विरासत को आगे ले जा रही हैं जो विरासत उनके बुजुर्ग अपने पीछे छोड़ गए हैं।
जब हमारे एक लड़का या लड़की गिटार देखता है तो उसकी तरफ मुझे कब नहीं सीखूंगी, तो हमें हमें उसकी तरफ नहीं मुतवजा होना है, बस ये हमारी विरासत है तो हमें यही सीखनी चाहिए।
इस मुस्लिम क्षेत्र कश्मीर में हजारों लोग सूफीज्म की राह पर चलते हैं। सूफीज्म के पैरोकार कश्मीर में दरगाहों पर सूफी संगीत के जरिए रूहानी मदद हासिल करते हैं। सूफी सुरों को सिखाने वाले 55 वर्ष के मोहम्मद याकूब शेख ने बहुत ही छोटी उम्र में अपने दादा से सूफी संगीत की बारीकियों को सीखा है। बीते कई वर्षों में शेख ने दर्जनों लड़कियों को सूफी संगीत सिखाया है। शेख बताते हैं कि बीते 30 वर्षों के खराब हालात ने इस फन को भी प्रभावित किया है।
हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि यह हसीन विरासत हमसे कहीं खो न जाए, हम इसको जिंदा रखने में बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं।
शेख के लिए सूफी संगीत को दूसरों तक पहुंचाना एक इबादत है। सूफी संगीत के मैदान में महिला की कम तादाद पर बात करते हुए शेख कहते हैं कि इस मैदान पर हमेशा से पुरुषों का गलबा रहा है। उनके मुताबिक लड़कियों का सामने आना सूफी संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। ना सिर्फ याकूब शेख और इरफाना जैसी लड़कियों के लिए सूफी संगीत को बचाना एक चुनौती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनका सूफी संगीत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर लिखिएगा। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। कोरिया ओपन में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर चैंपियन बनी पीवी सिंधु की निगाह अब जापान ओपन सुपर सीरीज खिताब पर टिकी हुई है। सिंधु अब क्वालिफायर के साथ शुरू होने वाले जापान ओपन में तीसरा सुपर सीरीज खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। जापान ओपन जो कि 9 सितंबर से पहले ही शुरू हो चुका है और ये चलेगा 8 अक्टूबर तक। दिनेश खन्ना जो कि फॉर्मर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया साइना नेहवाल के बारे में कि क्या वो जापान ओपन में जाएंगी,
कुलेला गोपीचंद एकेडमी में दोबारा शिफ्ट की हैं तो थोड़ा सा समय लगता है एक खिलाड़ी को सेटल होने में एक नए वातावरण में, तो इसीलिए उन्होंने शायद अपना नाम ड्रॉप किया हो कोरिया ओपन से, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद वो चाहती हैं कि जब सुपर सीरीज खेलें तो पूरी तैयारी से उतरें उसमें, और इसीलिए जापान में देखने को साइना नेहवाल को देखने को मिलेगा हमें जापान ओपन में।
वैसे सिंधु ने पिछले हफ्ते कोरिया ओपन में मिनात्सु मितानी के खिलाफ दूसरा गेम गंवाने के बाद जीत दर्ज की थी और अब वो फिर से इस हफ्ते शुरुआती दौर में जापानी खिलाड़ी से भिड़ेंगी। कुल मिला के सबकी निगाहें पीवी सिंधु के ऊपर ही हैं। और अब बात करते हैं फॉर्मूला 1 की। लुइस हैमिल्टन ने रविवार को बारिश से प्रभावित सिंगापुर ग्रांड प्री में जीत दर्ज की है। इस जीत से हैमिल्टन ने ड्राइवर चैंपियनशिप में अपनी बढ़त 28 अंकों की कर ली है और हैमिल्टन की ये लगातार तीसरी जीत है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। BBC समाचार। अमेरिका पर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी मौसम विभाग ने चेताया है कि हरिकेन मारिया और खतरनाक हो गया है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान का केंद्र आने वाले कुछ घंटों के अंदर डोमिनिका के पास से गुजरेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना की अपील की है। ट्रंप न्यूयॉर्क में लातिन अमेरिकाओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पुलिस अधिकारी के मुताबिक इकबाल कास्कर को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया। म्यांमार के नेता आंग सान सूची रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़की हिंसा पर पहली बार देश को संबोधित करने जा रही हैं। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया तिलक राज भाटिया ने और फेसबुक पर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया सिंधु वासनी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें, उससे जुड़े तमाम विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।